5 जून 1973 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर के देहावसान के बाद सभी स्वयंसेवकों को संबोधित उनके 3 सीलबंद लिफाफे खोले गए। पहले लिफाफे में एक पत्र था जिसमें उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि उनके बाद बाला साहब देवरस को आरएसएस का सरसंघचालक बनाया जाए। गोलवलकर की तरह देवरस आरएसएस में देर से नहीं आए थे। 12 साल की उम्र में ही वो पहले सरसंघचालक डॉक्टर हेडगवार के प्रभाव में आ गए थे। कहा यह जाता है कि अब तक आरएसएस के जितने भी सरसंघचालक हुए हैं उनमें बाला साहब देवरस का झुकाव राजनीति की तरफ सबसे ज्यादा था। राम बहादुर राय इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख होने के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और संघ परिवार से भी जुड़े रहे हैं।
बाला साहब देवरस का जो पिंड था, उनके व्यक्तित्व का जो केंद्र था, वो पॉलिटिकल था। कहना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई का जो अर्थ उन्होंने समझा था, जिसलिए वो आरएसएस में आए थे, और कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि संघ के संस्थापक को उन्होंने जिस तरह से समझा था, उससे उनको पढ़ने या उनको सुनने या उनको जानने के बाद मेरा मत भी है कि वे पूर्णतः राजनीतिक प्राणी थे, लेकिन इस अर्थ में राजनीतिक नहीं थे कि सत्ता के लिए वो स्वयं अपनी दावेदारी करते हों।
हेडगवार की तरह बाला साहब देवरस को भी उनकी व्यवहारिकता के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी ने एक बार कहा था,
गुरु गोलवलकर कहते थे कि जिन्होंने डॉक्टर हेडगवार को नहीं देखा हो उन्हें बाला साहब को देख लेना चाहिए। एक बार गुरुजी तांगे में बैठकर जा रहे थे और बाला साहब तांगे को रास्ता बताते हुए नीचे चल रहे थे। उनको पैदल चलता देख गुरुजी ने कहा कि असली सर संचालक तो पैदल चल रहे हैं और नकली सर संचालक तांगे में बैठकर चल रहे हैं।
1948 में जब आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था तो गोलवलकर की गिरफ्तारी के बाद संघ के नेतृत्व की जिम्मेदारी भैया जी दाणी के साथ बाला साहब देवरस ने उठाई थी। डॉक्टर करंदीकर ने अपनी पुस्तक 3 सरसंघचालक में लिखा है,
प्रतिबंध के बाद सरदार पटेल की ओर से द्वारिका प्रसाद मिश्र बातचीत करने नागपुर आए थे। उन्होंने बाला साहब से मुलाकात की। वो चाहते थे कि गुरु गोलवलकर जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखें। इसे बाला साहब ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। जो निर्णय बाला साहब ने किया उसे गुरु गोलवलकर ने यथावत माना।
लेकिन एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान रखने के बावजूद गुरु गोलवलकर और बाला साहब देवरस वैचारिक मामलों में एक धरातल पर नहीं थे।
1947 में देश आजाद हो गया तो संघ में जो बाला साहब देवरस थे वे दूसरे तरह से सोचने लगे और संघ के जो समय के सरसंघ चालक थे उनके सोचने की दिशा दूसरी थी, और साल भर बाद ही उन दोनों में दृष्टिकोण का फर्क, बहुत ज़बरदस्त फर्क आया। अब आज़ादी के बाद संघ को क्या करना चाहिए, इस सवाल पर गुरुजी और बाला साहब देवरस में दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन गहरे मतभेद थे और वे मतभेद राजनीतिक ही थे। संघ में आज भी इस बात पर बहस चलती रहती है कि हमको राजनीति में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, हमको केवल समाज सेवा के काम में रहना चाहिए। ये दुविधा संघ की शुरू से आज तक रही है, लेकिन मैं जितना समझ पाता हूँ उसमें संघ का जो सरसंघ चालक है वह जो सोचता है, जो निर्णय करता है, वही संघ का निर्णय होता है। हालांकि उसकी प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, लेकिन अंतिम फैसला तो सरसंघ चालक का ही है। इसलिए गुरुजी के कार्यकाल में संघ में एक स्टेज पर इस बात पर संघ के उनके सहयोगियों में बड़ा भारी मतभेद का दौर आया और एक एक करके जो बहुत प्रमुख लोग थे वो संघ से निष्क्रिय होने लगे। उन निष्क्रिय होने वालों में बाला साहब देवरस भी थे, और उसका कारण ये था कि संघ को राजनीतिक दिशा भी लेनी चाहिए। इस पर मतभेद था।
अधिकतर आरएसएस नेताओं की तरह उच्च जाति से आने के बावजूद देवरस सामाजिक समरसता की वकालत किया करते थे। एक बार उन्होंने पुणे में भाषण देते हुए कहा था कि अगर छुआछूत पाप नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। बाला साहब देवरस के नाती अरविंद मार्डीकर बताते हैं।
8 मई 1974 का जो उनका वसंत व्याख्यानमाला का जो सुप्रसिद्ध भाषण है अनटचेबिलिटी के खिलाफ वाला, तो उस समय तो कोई इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह नहीं थी। तो 8-10 दिन बाद वो अखबारों में आया, बड़ी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग देन नथिंग इन द वर्ल्ड इज रॉन्ग एंड इट मस्ट गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो ये भाषण 8 मई 1974 के बाद, मान लीजिए 10-12 दिनों में, जब हमारी कोई बातें हो रही थी, हम लोग स्कूल में, उस समय छुट्टियां भी थी लेकिन हमारे वर्ग वगैरह चलते थे, तब हमारे सर ने ये बताया था कि देखिए आदमी की सोच कैसी होती है, किस प्रकार होती है, और ये हमको समझना पड़ेगा और ये हमको आचरण में लाना पड़ेगा। तब शायद मुझे पहली बार ज्ञात हुई, मैं 10वीं कक्षा के हूँगा, तब मुझे पता चला कि हमारा सौभाग्य है कि किस घर में हमारा जन्म हुआ है और कितना उत्तुंग इनका व्यक्तित्व है।
देश की राजनीति में छात्रों का पहले पहल इस्तेमाल बाला साहब देवरस ने 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के दौरान किया। उसके बाद से भ्रष्ट और नाकारा सरकारों से इस्तीफा दिलवाने के लिए छात्रों को सड़क पर उतारकर आंदोलन चलवाना एक सर्वस्वीकृत दस्तूर बन गया। इसका अगला प्रयोग बिहार में किया गया।
जो छात्र संघर्ष संचालन समिति थी उसमें मैं था। जेपी जब घूम घाम कर आते थे तो उनके साथ दोनों की, जन संघर्ष समिति की और छात्र संघर्ष संचालन समिति की, साझा बैठक होती थी। ये 74 फरवरी वगैरह के आसपास की बात है, जब जेपी दिल्ली से आए तो उन दिनों एक छोटी सी खबर अखबारों में छपी थी कि जेपी की लंबी बातचीत बाला साहब देवरस से हुई है। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि बाला साहब देवरस से जो आपकी बातचीत हुई है, हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई। तो जेपी ने पहली बात तो ये कही कि बाला साहब देवरस से मेरी ये पहली मुलाकात थी, लेकिन मैं उनसे प्रभावित हूँ और उनसे मैंने पूछा कि आप हिंदुत्व तो क्या है यह बताइए। और उसका जो उन्होंने जवाब दिया उससे मैं प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदू वह है जो हिंदूपन का अभिमान छोड़ दे, और हिंदुत्व तो धर्म नहीं है, हिंदुत्व तो राष्ट्रीयता है। तो हम लोगों को लगा कि ये जेपी और बाला साहब देवरस में एक समझदारी है, वो विकसित हुई है। दूसरा, उन दिनों गोविंदाचार्य जो है वो संघ के आरएसएस के विभाग प्रचारक थे, यानी 3-4 जिलों का काम उनके जिम्मे था, और वे बढ़ चढ़ करके व्यक्तिगत हैसियत में आंदोलन में सक्रिय थे। तो आरएसएस के जो वहाँ प्रांत स्तर के जो पदाधिकारी थे, वे गोविंदाचार्य को इसके लिए दंडित करना चाहते थे, क्योंकि आरएसएस का कोई पदाधिकारी सीधे आंदोलन में शामिल हो, ये उसकी नियमावली के विपरीत है। तो ये बात बाला साहब देवरस तक पहुँची और बाकायदे नागपुर में इसके लिए गोविंदाचार्य को बुलाया गया। आरएसएस के जितने बड़े लोग थे वो सब वहाँ उपस्थित थे और एक तरह से उनकी सुनवाई हुई। पहले बाला साहब देवरस ने पूछा कि बताओ क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा गोविंदाचार्य ने कोई गलत काम नहीं किया है और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आरएसएस समर्थन कर रहा है और एक स्वयंसेवक के नाते इसने सक्रिय भूमिका निभाई, ये ठीक किया।
संघ परिवार से जुड़े वरिष्ठ नेता गोविंदाचार्य भी मानते हैं कि 1974 के बिहार आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बढ़ चढ़कर भाग लेना बाला साहब देवरस के बिना संभव नहीं हो सकता था।
1974 का आंदोलन चल पड़ा जिसमें संघ इत्तेफाक से शान लिया गया, हमारे राम बहादुर के नाम मीसा वारंट जारी कर दिया गया। मैं तो आंदोलन में बहुत पेरिफेरी में बाहर था एक तरह से, लेकिन जब मीसा वारंट हो गया तो मैं शाखा जा नहीं सकता था, तो आंदोलन में लग गया। जयप्रकाश जी से जाकर मिलाया, वो भी आंदोलन में आ गए। तो अब इसके बाद संघ के कई लोगों को लगा जरूर कि ऐसा ना हो कि इसने अपने मन से किया है। तो अंत में बाला साहब देवरस ने, जब वो बिहार के दौरे पर आए थे लगभग समझे अप्रैल मिडल में, तब तक आंदोलन उफान पर था, तब उनको समझ में आया कि आंदोलन में सबकी सहभागिता है। उन्होंने स्टैंड लिया लेकिन कि संघ का स्वयंसेवक भी जागरूक नागरिक है, संवेदनशील नागरिक है, तो समाज में हो रहे बदलाव और समाज के तकाजों को अनसुना कैसे कर सकता है। तब उन्होंने ये कहा था कि देखो, बिना तैयारी के अखाड़े में उतर पड़े हैं, बहुत संकट आएंगे, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं है, इसको अपने मुकाम तक पहुँचाना ही पड़ेगा। और ये उन्होंने जिस गंभीरता आत्मीयता से मुझे संबोधित करते, फिर कहा कि देखो यहाँ से बाहर मत जाना, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूँगा। और फिर शाम के समय एक स्वयंसेवक आया, मोटरसाइकिल लेके आया और वो हमें अपने पीछे बिठा कर ले गया और महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बस में बिठा दिया। तो उस समय हमने देखा कि एक और छोटा सा फूड पैकेट वो भी साथ में, कहा कि बाला साहब ने ये भेजा है, ध्यान रखना। और स्वयंसेवकों को सीट पर बिठा कर फिर वो वापस गया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि देखो एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब मुझे पब्लिकली डिसओन करना पड़े तुमको कि तुम प्रचारक नहीं, तुम तो अपने मन से निर्णय कर रहे थे, कहना पड़ेगा, तुम इसका बुरा मत मानना, तुम प्रचारक ही माने जाओगे। ये कार्यकर्ता के प्रति कहते हैं ना कि ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल, वो स्थिति मैंने अनुभव की है बाला साहब के साथ।
1975 में आपातकाल के दौरान बाला साहब देवरस को गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। इसी दौरान आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया। जेल में रहने के दौरान देवरस ने इंदिरा गांधी को कई पत्र लिखे जिसकी बाद में बहुत आलोचना भी हुई। मधुलिमय ने अपनी किताब जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट में लिखा,
देवरस ने इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव याचिका पर अपील जीतने पर बधाई दी थी। उन्होंने अपने आप को जेपी आंदोलन से दूर करते हुए इंदिरा गांधी से अनुरोध किया था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा प्रतिबंध हटा लें। इस मामले में विनोबा भावे से भी हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था।
राम बहादुर राय बताते हैं कि बाला साहब देवरस का ये कदम एक रणनीति के तहत था, लेकिन इसे आरएसएस के सामान्य कार्यकर्ताओं ने पसंद नहीं किया था।
उन दिनों, जिन दिनों ये पत्र लिखा गया है, उन दिनों अंडरग्राउंड मूवमेंट में जो लोग भी थे उन सबकी ये कोशिश थी कि इंदिरा गांधी किसी तरह से चुनाव के लिए तैयार हो जाए। तो चुनाव के लिए तैयार होने के लिए अगर आरएसएस को कहीं माफ़ी भी मांगनी पड़े तो उसके लिए भी उन लोगों ने मन बना लिया था, ताकि इंदिरा गांधी चुनाव के लिए तैयार हो। अब इस बारे में दो तरह के विचार हैं। एक विचार यह है, जैसे मेरा अपना विचार है, नवंबर 76 में मैं जेल से बाहर आ गया था और दिसंबर की 29 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी से एक फिरोज शाह रोड पर मैं मिला। उन दिनों वो हाउस अरेस्ट थे। मैंने वाजपेयी जी से पूछा कि आपकी ओम मेहता से भेंट हुई है, ओम मेहता शायद आपसे मिलने आए थे। तो वाजपेयी जी ने मजाक में कहा कि ओम मेहता बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनसे मिलने गया था। तो मैंने कहा कि हम लोग जो अंडरग्राउंड मूवमेंट में हैं उनके लिए इस बातचीत का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि ओम मेहता ने मुझे एक लंबी लिस्ट दी है और ये कहा है कि विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जो रेलवे की पटरियां उखाड़ी गई हैं, हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, ये विद्यार्थी परिषद के लोगों ने किया, तो आप लोग माफ़ी मांगिए। तो मैंने कहा कि वाजपेयी जी, मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से तो बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन राम बहादुर राय की ओर से मैं बोल सकता हूँ, मुझे बंदूक उठा करके लड़ना पड़े तो मैं इसके लिए तो तैयार हूँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाला साहब देवरस की चिट्ठी पर भी आरएसएस में दो तरह की प्रतिक्रिया थी। एक, जो टैक्टिकल लाइन का समर्थन करते थे वे मानते थे कि ये चिट्ठी ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से या जो लोग इस लड़ाई को एक सैद्धांतिक लड़ाई मानते थे वो, उनको इस बात का अफसोस था कि बाला साहब देवरस ने ऐसी चिट्ठी लिखी।
बाला साहब को दूसरे विश्व युद्ध पर बनी फिल्में बहुत पसंद थी, खास तौर से ब्रिज ऑन द रिवर क्वाय को उन्होंने कई बार देखा था। इसके अलावा वो मारने, बी प्रिपेयर्ड, स्काउट और फॉकलैंड जैसे मार्चिंग बैंड को बार बार बजाने का अनुरोध भी करते थे। बाला साहब देवरस के कार्यकाल के दौरान ही आरएसएस में मुसलमानों के प्रवेश का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में विचारार्थ आया था, लेकिन वो खारिज हुआ और देवरस संघ की परंपरागत सोच को नहीं बदल पाए।
मैं इसका साक्षी हूँ। देखिए, 1975 के इमरजेंसी के दौरान मुस्लिम नेता और आरएसएस के नेता साथ साथ जेलों में थे और आपस में एक सौहार्द बना था। और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो शाही इमाम वगैरह भी आरएसएस के दफ्तर में जाते थे और मान लीजिए शाम की उनके नमाज का समय है तो वहाँ नमाज पढ़ते थे। इस तरह का एक सौहार्द बना था। और मुरारजी भाई की ये सलाह थी आरएसएस को कि आप आरएसएस को यानी संघ को हिंदुओं तक सीमित करने के बजाय आप उसको ओपन कर दीजिए, जिसमें मुसलमान भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, दूसरे लोग भी आ सकते हैं, गैर हिंदू भी आ सकते हैं। तो 1977 की जो प्रतिनिधि सभा हुई इस सवाल पर विचार हुआ, तो इस पर बहुत बहस हुई और उस बहस में बाला साहब देवरस का रुख ये था कि हमको ओपन करना चाहिए। लेकिन बाला साहब देवरस के जो प्रमुख सहयोगी थे जैसे यादवराव जोशी, मोरोपंत पिंगले, दत्तोपंत ठेंगड़े, मैं उस प्रतिनिधि सभा में था। उसमें जब बाला साहब के अलावा सभी इसके विरोध में जब खड़े हो गए तो उन्होंने अपने समापन में इस अध्याय को बंद किया। अगर बाला साहब देवरस पर निर्णय छोड़ा जाता तो संघ की शाखाओं पर वो सबको यानी उसको खुला छोड़ देते।
उसी तरह दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर भी वो आरएसएस के अपने साथियों को नहीं राजी करवा पाए। बाला साहब देवरस के कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर कई बार बहस हुई कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा बड़ी है या सत्ता की राजनीति।
इसमें आपको बीजेपी की यात्रा को बांटकर देखना पड़ेगा। 80-84 अंधेरे में एक चिंगारी, अटल बिहारी, और उस समय वृंदावन दस्तावेज का विशेष उसकी अहमियत थी बीजेपी के काम के फंक्शनिंग में। और उन लोगों का यह सोचना था कि भारत एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी कभी पावर में आ ही नहीं सकती। इसलिए एक आर्टिकल भी लिखा गया था आई थिंक वे बैक इन 1970 और सो कि संघ के वो स्वयंसेवक जो राजनीति में हैं उनके सामने यक्ष प्रश्न है कि या तो आइडियोलॉजी पर अडिग रहें और सत्ता में कभी ना आएं और सपना न देखें, या विचारधारा से समझौता करें, सत्ता में आवें और दायित्व निर्वाह करें। इस पर संघ में बाला साहब देवरस ने ही प्रमुख लोगों की बैठक भी बुलाई, अटल जी भी आए, अटल जी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, उन्होंने प्रस्तुत किया भी। गुरुजी उस समय थे, बाला साहब तो सरकारीवाद थे, तो गुरुजी ने समारोह किया था। उन्होंने कहा था कि देखो, मैं इस बात से सहमत हूँ कि विचारधारा पर आग्रह रखने वाली पार्टी वो जल्दी सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ब्रिटेन में ही जिस वेस्टमिंस्टर सिस्टम को हमने एडॉप्ट किया है उसमें लेबर पार्टी का जन्म 1900 में हुआ। 29 साल तक वो आइडियोलॉजी पर अडिग रखते हुए मेहनत करते चले गए। 1929 में अंत में कोलिशन पार्टनर बन गए लेबर पार्टी। 1939 10 साल बाद वो अपने बल पर पूर्ण बहुमत ला सके। इंग्लैंड में उतना समय लगा, भारत में वो कितना लगेगा या कम या ज़्यादा ये तो कई बातों पर निर्भर है, निष्ठा के साथ हम कितना परिश्रम कर पाते हैं, कुल मिलाकर राजनीतिक स्थिति क्या बनती है इससे तय होगा वो कालखंड। फिर अटल जी ने उसमें पूछा भी कि हमको तो स्पष्ट बताइए कौन सी लाइन लेना चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि आप सब वरिष्ठ हैं, सब ज्येष्ठ हैं, अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप सब मिलकर जो तय करें, मैंने जो कहना था मैंने समारोह में कह दिया। तो ये जो 81-84 का फेज है वो उस डायलमा का वो आस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। और उसमें रिजल्ट आ गया था, दो लोकसभा सीटें जीत पाए थे, फिर संवाद बढ़ा था, फिर संघ का मेरा अनुमान है कि अपर हैंड भी बढ़ा था। और उसी में से जितनी जानकारी मुझे है उसमें आइडियोलॉजी के नाते से तब तक गांधीवादी, समाजवाद और पंच निष्ठाओं का दौर था। अब तय हुआ कि नहीं, एकात्म मानव दर्शन ही बेसिक आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट रहेगा, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में गांधीवादी समाजवाद का भी आश्रय लिया जाएगा।
आडवाणी की रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं था, ये फैसला बहुत सोच समझकर बाला साहब देवरस के नेतृत्व वाले आरएसएस ने लिया था। प्रलय कानून को अपनी किताब आरएसएस ट्विस्ट विद पॉलिटिक्स में लिखते हैं,
राम जन्मभूमि और रथ यात्रा की वजह से ही संघ परिवार भारतीय राजनीति के कार्यक्षेत्र में घुस पाया, जिसमें कि वो अब तक कामयाब नहीं हो पाया था। अब ये उत्तर भारत के शहरी इलाकों के कुछ परंपरागत क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने सीमित उच्च जाति आधार को भी विस्तार देने की कोशिश कर रहा था। यह भी सच है कि मंडल का विरोध करने वाले उच्च जाति के युवा भी राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन में आ खड़े हुए थे।
भारतीय जनता पार्टी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे या न करे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के संबंधों में दबदबा हमेशा आरएसएस का ही रहा है।
1977 में ये तय हो गया। गुरुजी का जो स्थान था वह दूसरे तरह का था, यानी पद में भी, विद्वता में भी और व्यक्तित्व में भी वो बहुत बड़े थे। तो उनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह जो है वो एक तरह से स्कूल के विद्यार्थी की तरह से होते थे। लेकिन जब बाला साहब आए तो बाला साहब करीब करीब समकक्ष थे और संगठन के व्यक्ति थे। तो लालकृष्ण आडवाणी ने उनके सरसंघ चालक बनने के बाद एक इंटरव्यू में यह आशंका भी व्यक्त की कि हो सकता है कि ये रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप करें, लेकिन अनुभव यह है कि उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और बाला साहब जो है वो पहली बार दिल्ली आए तो उनको स्टेशन पर लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी गए, लालकृष्ण आडवाणी गए, पूरा मंत्रिमंडल के जो जनसंघ घटक के लोग थे वो गए, सिकंदर वक्त भी गए। तो कैबिनेट की बैठक में मुरारजी देसाई ने यह सवाल पूछा, हमारे मंत्रियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सिकंदर वक्त ने सवाल खड़ा किया कि वो जाने में हर्ज क्या है। लेकिन उस घटना ने, यानी बाला साहब को की आगवानी में मंत्रिमंडल के लोग गए हैं, उस घटना से और फिर रामलीला मैदान में जो जब उनका स्वागत हुआ तो उसमें कतार में जो जनसंघ घटक के मंत्री और नेता बैठे हुए थे, तो उससे ये साबित हो गया कि वो सरसंघ चालक हैं और ये स्वयंसेवक, ये है रिश्ता।
अपनी मृत्यु से 2 साल पहले ही बाला साहब देवरस ने रज्जू भैया को आरएसएस का सरसंघ चालक बना दिया। आरएसएस में पहली बार ऐसा हुआ था। 26 नवंबर 1995 को बाला साहब देवरस के 80 बसंत पूरा करने पर नागपुर में एक समारोह हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा शीर्ष नेतृत्व उन्हें सम्मान देने के लिए वहां पहुंचा था।
26 नवंबर 1995 को हमने उनका सहस्र चंद्र दर्शन का कार्यक्रम किया था, क्योंकि 80 बरस जो पार करता है तो ऐसी मान्यता है कि जिस आदमी ने 80 बसंत पार कर लिए उसने 1000 चंद्रमा का उदय होते हुए देखा है। सबकी मंशा थी, परिवार वालों की थी, संघ के कार्यालय स्वयंसेवकों की थी, सभी की थी। तो वो हमने सहस्र चंद्र दर्शन कार्यक्रम का रेशम बाग को 26 नवंबर 1995 में किया था और ईश्वर कृपा से मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था। तो सुबह के समय पे जो भी विधि विधान भी हुए थे और शाम को महामंडलेश्वर स्वामी जी आए थे, उनके हाथों से आशीर्वचन का भी कार्यक्रम था। तो सुबह का जो हमारा पारिवारिक कम इनका कार्यक्रम था उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, भैरव सिंह जी शेखावत, मुरली मनोहर जी, अशोक जी, नानाजी देशमुख, दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, जितने भी चाहे सारे लोग आए थे, सारे लोग पधारे थे। वो विधि विधान उन्होंने देखी थी, तब तो बाला साहब जी ने बोलना लगभग बहुत कम कर दिया था, मात्र आंखों से बोलते थे। उस समय एक बहुत अच्छी बात दत्ता जी ने कही थी, कंधे पर हाथ रखे, वो फोटो भी मेरे पास है, कि भाई आपने क्या जादू कर दी कि एक ऐसा कार्यक्रम आपने कर दिया जो पूरे घर का था और सारा के सारा पूरा भारतवासी का परिवार आपने एक जगह पे आप लेकर आए। तो वो कार्यक्रम एक बहुत ही संस्मरणीय हुआ था और उस समय जो केवल आंखों से उनके आशीर्वाद मिले थे, बस उसको मैं शब्दों में नहीं ढाल सकता उसको मैं।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।